home. वहीं चल रही थी 5 जुलाई 1968 दूसरे पेज के अंत में अंतिम लाइन में बोला अलफ तो है ही सभी का बाप और जो सभी का बाप है वही हमको पढ़ाते हैं तीसरा पेज मूल बात रहती है विकर्म कैसे विनाश हो विकर्म विनाश के लिए ही आत्मा बुलाती है और बुलाती भी है शरीर के द्वारा मनुष्यों को तो इन बातों का कुछ भी पता ही नहीं है कि आत्मा बिना शरीर के कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकती तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता होगा भल तुम बच्चे कहां भी रहते हो बुद्धि में रहता होगा बाबा अभी मुरली चलाए रहे होंगे वो मुरली आवेगी बाहर की दुनिया में ऐसे ख्यालात चलेंगे और यहां तो तुम बाप के सन्मुख हो वहां तो तुम्हारे सन्मुख भाई बैठते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई और यहां सन्मुख बैठते हो तो जरूरी ये रथ भी याद आवेगा जानते हो इस रथ में बाबा है तो दो आत्माएं हैं एक शिव की आत्मा और एक वो शिव सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु बाप जिसमें बैठा है जिसे बाबा कहा जाता है निराकार ज्योति बिंदु को बाबा नहीं कहेंगे क्या कहेंगे वो बिंदु बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है दूसरे कोई संबंध नहीं बनते हैं दूसरे संबंध बनते ही तब हैं जब शरीर में आते हैं तो बुद्धि में आता है कि दो आत्माएं हैं एक दादा की एक बाप की कई नए बच्चे होंगे जो मुझते होंगे कि बाबा को कहां याद करें कैसे याद करें अभी तुम बच्चे तो समझते हो अगर तुम बच्चों को मालूम हो जावे कि बाबा अभी मधुबन में नहीं है तो फिर मिलने के लिए कोई नहीं आवेगी ऐसे ही संगठन क्लास करने के लिए आएंगे लेकिन मिलने के लिए नहीं आवेगी मानो कोई सुनेंगे बाबा बंबई में है तो वहां बंबई में तो इतने बच्चे आ भी न सके क्यों? बंबई में ऐसी क्या खास बात है? हैं? जो इतने बच्चे बाहर नहीं इकट्ठे हो सकते? इस समय की वाणी है, 68 की वाणी है, जिस समय मिनी मधुबन में वाणी नहीं चल रही थी, कहाँ चल रही थी? महामधुबन में। तो बंबई में तो इतने बच्चे आ नहीं सकते, यहाँ तो मधुबन है। तो सभी सेंटर्स के वैरायटी बच्चे आते हैं, वो भी संभाल के आते हैं। यहाँ तो है ही बच्चों के लिए निवास स्थान, समझते हैं हम जाते हैं शिव बाबा के पास इस रथ के द्वारा मिलने के लिए, फिर भी पहले पहले तो अपन को आत्मा समझना है। फिर बात आती है कि हम परमपिता परमात्मा के पास जाते हैं, और वो परमपिता परमात्मा तो ऊपर में रहते हैं, माना नीचे नहीं है, नीचे होते हुए भी मन बुद्धि की स्टेज से ऊपर में रहते हैं, वहां आत्माएं जा सकती हैं, शरीर तो जा नहीं सकते। और ये परमपिता परमात्मा भी रथ बिगड़ तो बात कर न सके, परमधाम में रथ होते भी नहीं, तो वहां वाणी से परे का धाम कहा जाता है, बात तो कर नहीं सकते, रथ में ही आकर के समझाते हैं, इसलिए उनको नाली सुन कहा जाता है। इसलिए अगर आकर के समझावे नहीं तो फिर नालिश गुरु कैसे कहे जावे? एक्ट में आवे तब तो नालिश गुरु कहा जावे। मनुष्य तो समझते हैं कि वो ही सब कुछ देते हैं, इसको बच्चा होता है तो कहते भगवान ने दिया, धन मिलेगा तो वो भी कहेंगे खुदा की कृपा है, और तुम क्या कहेंगे है? तुमको धन मिलेगा, बच्चा मिलने की तो बात ही नहीं, अलौकिक तो बच्चे तो मिल सकते हैं, तो तुम क्या कहेंगे भगवान ने दिया या ड्रामा में नूद है? ड्रामा में नूद है, तो तुम कहेंगे ये सब ड्रामा प्लेन अनुसार होता है, और ड्रामा की शूटिंग कौन करता है? ड्रामा की शूटिंग करवाता कौन है और करता कौन है? इस संगम युग में ही बाप है डायरेक्टर, वो शूटिंग करवाता है, और हम बच्चे ड्रामा शूट करते हैं, और शूट भी वैसा ही करते हैं जैसा कल पूर्व में किया होगा। हमारी आत्मा में नूंद है, और ये भी कि स्वर्ग किसको कहा जाता है ये भी तुमको अभी पता पड़ा है। क्या पता पड़ा है? है? पहले नहीं स्वर्ग बोलते थे? पहले बोलते तो थे, कहते थे जो मरा वो स्वर्ग पधारा। तो समझते थे स्वर्ग कोई ऊपर में है। अब ऐसी तो कोई बात है नहीं, ऊपर में क्यों बताते हैं भक्ति मार्ग में? क्योंकि देवताएं देह अभिमान की नीची स्टेज में नहीं रहते, वो तो सदैव आत्मिक स्थिति की ऊंची की स्टेज में रहते हैं। इसलिए स्वर्ग को ऊपर बताई दिया। और मनुष्य तो समझते हैं बहुत दुनियाएं हैं, जितने सितारे हैं वो सब में दुनिया बसी हुई है। कितने गपोड़े मारते रहते हैं, तो जो मनुष्य समझते हैं कि बहुत दुनियाएं हैं, ये भी बात कहां से निकाली? अरे संकल्प में आता है, संकल्प का बीज पड़ा है तो कहीं तो इस बात का फाउंडेशन पड़ा होगा। संगम युग में ही इस बात का भी फाउंडेशन पड़ता है। बाप बताते हैं वो है आसमान के जड़ सितारे और तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। हर चैतन्य सितारे की 84 जन्मों की संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाली आत्माओं की अपनी अपनी दुनिया है। कि सभी आत्माएं 500-700 करोड़ के संबंध संपर्क में आती हैं? नहीं आती। तो हर आत्मा की अपनी अपनी दुनिया है, ये बात यहाँ बुद्धि में बैठती है। तो वहां भी कहने लगे उन सितारों में दुनिया है। एरोप्लेन से जाते रहते हैं कि वहां प्लेटफार्म बनावेंगे, फ्लैट खरीदेंगे। अब ऐसा तो कुछ होता नहीं, ये तो उनके गपोड़े हैं। और ऐसे भी नहीं लाखों वर्ष की ये दुनिया है, नहीं, लाखों वर्ष की दुनिया हो तो उसके आदि मध्यंत का हिसाब भी नहीं बताया जा सकता। बाप समझाते हैं जब कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है तब मैं आता हूं। ये चार युगों की दुनिया है। इस ड्रामा में चार सीन हैं बेहद के। तो बाप तो राइट बात ही बतलाते हैं, बाकी भक्ति मार्ग की बात है सभी झूठी है। मूल बात फिर भी बाप समझाते हैं मनमना भव। गीता में भी मनमना भव आया हुआ है परंतु वो अर्थ को कुछ भी समझते नहीं। अभी बाप बतलाते हैं कि मनमना भव का अर्थ क्या है। देह सहित देह के साथ संबंधों को त्याग दो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब खलास होने वाला है। तो नाशवान में बुद्धि क्यों लगाओ? और भगवान तो सभी बच्चों को कहेंगे ना, क्योंकि ढेर के ढेर बच्चे बेहद की पढ़ाई है। और बाप तो जो बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाला है वो कोई पुस्तक आदि रेफर नहीं करते हैं। पुस्तक आदि पढ़ करके पढ़ाते हैं क्या? हाँ, इसने सब पढ़ा है। इसने जिस तन में आता हूं उसने पढ़ा है, बाप ने इसमें प्रवेश किया, फिर इसने गीता आदि सब फेंक दी। तो गुरुओं को भी छोड़ दिया, गुरु गोसाई आदि सभी एक धक्के से खत्म कर दिए। बाबा ने कहा ये सब गुरु गुराए गुरु गोसाई गीता आदि शास्त्र ये भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग में कोई शास्त्र होता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में अनेक गुरु होते हैं, भक्ति मार्ग में तो अनेक गुरु होते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में एक गुरु होता है या अनेक गुरु होते हैं? अनेक गुरु होते हैं। अच्छा, बीके वाले वहां एक गुरु है कि अनेक गुरु है? वो है ही भक्ति मार्ग की सूची। भक्ति मार्ग में एक गुरु मर जाता है तो दूसरे को गद्दी पर बैठा देते, फिर जैसे वो बताता है वैसे वैसे चलते रहते। गलत बताए तो भी चलना है, अच्छा बताए तो भी चलना है। भेड़ चाल है भक्ति मार्ग की। आगे ये बातें बाबा नहीं समझा देते क्या है कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी भक्ति मार्ग की सूचना होती है? अभी कहते हैं, तुम कहेंगे कि बाबा तुमने पहले ही ये बातें क्यों नहीं बताई? तो हम वहां इतना पैसा खर्च ही नहीं करते? बाबा कहेंगे नहीं, ये सभी ड्रामा में डूब है, आगे चल करके तुमको और नई नई बातें संग सुनाते जाएंगे। अभी तो थोड़ी बातें बताइए। तुम प्रैक्टिकल में भी उन बातों को देखते रहेंगे, ऐसे नहीं कि थ्योरी में सुनावेंगे और समझावेंगे बस हो गया, नहीं, उन बातों को प्रैक्टिकल जीवन में भी तुम देखेंगे। इन आंखों से तुम बच्चों को देखना है। क्या मान लो विनाश की बात सुनाते हैं तो जो भक्त आत्माएं होंगी वो आखिरी दुनिया का विनाश इन आंखों से नहीं देख सकेंगे, और तुम बच्चे इन आंखों से सारी दुनिया का विनाश देखेंगे, और विनाश भी पुरानी दुनिया का और स्थापना नई दुनिया की देखेंगे। नई दुनिया जहां देखेंगे वहां जय जयकार होगी, और पुरानी दुनिया में क्या होता रहेगा? हाहाकार होता रहेगा। ये सब बातें तुम प्रैक्टिकल में देखेंगे क्या? अच्छा, बाबा ने नई दुनिया और पुरानी दुनिया की बात संक्षेपण के लिए नहीं बोली थी? बोली थी या नहीं बोली थी? बोली थी। तो संक्षेपण में कोई हाहाकार और जय जयकार हुआ क्या? नहीं हुआ। संक्षेपण से ही ब्राह्मणों की दुनिया में विनाशकारी दुनिया ढेर की ढेर एक तरफ और नई छोटी सी ब्राह्मणों की दुनिया दूसरी तरफ हो गई। छोटी सी दुनिया में जय जयकार, खुशियां ही खुशियां आने लगी। बाप का परिचय मिला, बाप को पहचाना और जय जयकार होने लगी। और पुरानी दुनिया वाले ब्राह्मण क्या करने लगे? वो हाहाकार करने लगे। हाँ, पहले हर काम सूक्ष्म में होता है, फिर बाद में स्थूल में भी होता है। बाकी हनुमान सूंड वाला, गणेश, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है। तो कोई हनुमान होगा लंबी पूछड़ी वाला, या कोई गणेश होगा लंबी सूंड वाला, नहीं। इन सब बातों में बुद्धि से टैली करना पड़ता है। गणेश जैसा पार्ट बजाने वाला होगा तो क्या उसको प्रैक्टिकल में सूंड होगी? नहीं, उसकी नाक बड़ी लंबी होगी, सारा काम नाक से करने वाला होगा। सूंघने की शक्ति बहुत तीखी होगी और ज्ञान सुनने के कान भी बड़े बड़े कान होंगे। आंखों में मदमातापन भरा हुआ होगा। देह अभिमानी ही देह अभिमान, और माथा, माथा माने बुद्धि, छोटी होगी या बड़ी होगी? छोटी। हाथी का माथा छोटा होता है, हाथी का माथा बहुत चौड़ा लंबा चौड़ा होता है, और देह भी लंबी चौड़ी दिखाते हैं। क्या मतलब हुआ है? देह भर बहुत भरा रहता है। तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं जो संगम युग में शूट होती रहती है। कितने ढेर के ढेर भक्ति मार्ग में चित्र बनाए, जो बनाने वाले हैं वो कहां बैठे होंगे? यही ब्राह्मणों की दुनिया, यही चित्र बनाने वाले भी हैं, और यहां उनकी पूजा करने वाले भी, गणेश हनुमान की पूजा करने वाले भी बैठे हैं। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में जो नौधा भक्ति करते हैं तो उनकी वह मनोकामनाएं भी अल्पकाल के लिए सिद्ध कर देते हैं। वो पूरी करना भी ड्रामे में नूद है। बाबा साक्षात्कार कराते रहते हैं, वो भी ड्रामे में नूद है। क्या एक तरफ कहते हैं साक्षात्कार बाबा कराते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं ड्रामा में नूद है? बगैर ड्रामा में नूद हुए साक्षात्कार भी नहीं करा सकते। कब कब बच्चे बुझते हैं, कहते हैं ये भोग आदि लगाना तो रंग है, फिर क्यों भोग लगता है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में भोग लगाते भी नहीं रहे, लगाते रहे या नहीं लगाते रहे? गुरुवार को खास भोग लगाते रहे। तो जब रंग है तो क्यों लगाया जाता है? नहीं, उस समय बाप का परिचय नहीं था, इसलिए ये सब भक्ति मार्ग की रीति समय बात चालू थी। अभी तो बाप का परिचय मिल गया तो भोग आदि लगाने की बात खत्म हो जाती है। तुम जानते हो कि जो संशय बुद्धि होते हैं वो विनश्यन्ति हो जाते हैं। किसके ऊपर संशय बुद्धि? बाप के ऊपर संशय बुद्धि, अपनी आत्मा के पार्टी के ऊपर संशय बुद्धि, और ब्राह्मण में संशय बुद्धि। और जो संशय बुद्धि हो जाती है उनको फिर ये उच्च पद मिल नहीं सकता। नर से नारायण जैसे बन ही नहीं सकते, कौन? संशय बुद्धि। बिना शांति का मतलब ये नहीं कि शरीर से खत्म हो जाते हैं, उनका पद भ्रष्ट हो जाता है, विनाश नहीं हो जाते। बाकी एम ऑब्जेक्ट का जो पद है वो मिल नहीं सकता। हर एक प्रकार के संशय आते हैं। अभी इन बातों में संशय लाने की तो दरकार ही नहीं है। किन बातों में? कौन सा मिसाल दिया? अभी कौन सी बात का मिसाल दिया? भोग लगाने को। कि भोग आदि क्यों लगाते हैं जब रंग है तो? अभी संशय नहीं आता है। उस समय भोग आदि इसलिए लगाते थे, लगाने वाले लगाते थे, पैसा देने वाले पैसा भी देते थे, खाने वाले खाते भी थे। इसलिए उस समय बाप का परिचय नहीं था। तो इन बातों में संशय लाने की दरकार नहीं है। और तो कुछ भी नहीं समझते हो, बाप में तो कब संशय नहीं आना चाहिए। क्या ड्रामा में संशय आ जाए, आत्माओं के पाठ में भी संशय आ जाए, लेकिन बाप में तो कम संशय नहीं आना चाहिए। कोई पूछते यह बात कैसे हो सकती है? अरे भगवान वाचे ना, मधुबन में डायरेक्ट बाप के आगे बाप के पास आए हूं, उनके आगे भोग आदि लगाते हैं, उसमें संशय की तो बात ही नहीं। ये भी बताते हैं योग से ही विकर्म विनाश होंगे। ये क्या बात कर दी? मधुबन में डायरेक्ट बाप के आगे आते हैं, बाप के पास आए उनके आगे भोग आदि लगाते हैं, डायरेक्ट बाप के पास आए फिर भोग आदि लगाते हैं, उसमें संशय की बात नहीं। और अभी ऊपर क्या बोला है? भोग आदि लगाना रंग है तो क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि उस समय उस समय बाबा था ही नहीं, बाप पर निश्चय बुद्धि होने की बात पैदा ही नहीं होती, बाप पे संशय तो आ ही नहीं सकता। अगर बाप है तो है, और फिर यहां मधुबन में तो डायरेक्ट बाप है, बाप के पास आए हो उनके आगे भोग लगते हैं, उसमें संशय की बात है। अरे है ये क्यों? पहले भोग लगता था उसमें संशय की बात थी, और अब जब डायरेक्ट बाप आया हुआ है तो संशय की बात नहीं, क्यों? पहले क्यों संशय की बात नहीं थी कि पहले क्यों संशय और अब संशय की बात क्यों? हैं? नहीं, जिस बाप की हम बात करते हैं वो बाप साकार आया हुआ है या निराकार ज्योति बिंदु बाप आया हुआ है? साकार भी तो आया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल है क्या? वो जन्मन के चक्र में आने वाला साकार है ओरिजिनली, या सदैव ही निराकारी स्टेज वाला? सदैव ही निराकारी स्टेज वाला है। उस समय भोग लगाते थे, परंतु उस समय तो बाप प्रैक्टिकल में था ही नहीं, मां थी। तो भोग लगाना राम था, भक्ति मार्ग की बात हो गई, और इस समय डायरेक्ट बाप के रूप में आया हुआ है। तो जो डायरेक्ट बाप के रूप में निराकार ज्योति बिंदु शिव जो अभोक्ता है, वो आया हुआ है, वो स्थूल भोग लगावेगा, रोटी दाल का भोग लगावेगा खावेगा, या विकारों का भोग खावेगा, कौन सा भोग लेने आता है? वो तो विकारों को अर्पण कराने आता है। जो 36 प्रकार के भोग लगाते हो वो खाता है क्या? वो तो नहीं खाता। तो बाप के पास डायरेक्ट आए हो, उनके आगे भोग आदि लगते हैं, उसमें संशय की बात नहीं है। तो ये कौन से भोग की बात हुई? हद के भोग की बात हुई या बेहद के विकारों की भोग की बात हुई? बेहद के विकारों की भोग की बात है। इन बातों में संशय मत लाओ, योग से ही विकल्प बिना। बाकी भक्ति मार्ग में भोग आदि लगाते हैं, उनसे कुछ फायदा नहीं, खुद भी समझते हैं, फिर भी संशय उठाते हैं, कहेंगे संशय बुद्धि विनश्यन्ति। ऐसे संशय बुद्धि स्वर्ग में भल आवेंगे क्या? ऐसे नहीं स्वर्ग में नहीं आवेंगे, स्वर्ग में भल आवेंगे परंतु ऊंच पद नहीं पावेंगे, पद का विनाश हो जाता है। तुम तो हाथ उठाते हो बाबा हम नरसिंह नारायण बनेंगे, आगे भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा भी सुनते थे, वो था भक्ति मार्ग, अभी तो तुम्हारा है ज्ञान मार्ग। वहां कथा सुनते थे लेकिन नरसिंह नारायण बनता कोई भी नहीं है, और यहाँ तो तुम सच्ची सच्ची कथा भी सुनते हो और सच्चम सच नरसिंह नारायण जैसे बनते भी हो। वहां तो जो कथा सुनाते हैं वही झूठी सुनाते थे, तो बनने की बात ही नहीं। तो कोई भी बात में संशय आता है तो पूछना चाहिए, बाप तो सभी कुछ समझाते रहते हैं, जो कुछ चलता है सब ड्रामा में लूट है। तो तुम और किसी को नहीं देखो क्या? संशय आदि कब उठते हैं? है? जब परचिंतन में जाते हैं तो संशय उठते हैं। अगर हम औरों को देखना बंद कर दें, औरों के बारे में मनन चिंतन मंथन करना बंद कर दें, तो संशय भी उठना बंद हो जाएंगे। तो किसी को मत देखो, सिर पर पापों का बोझ बहुत है, पहले वो बोझ तो अपना खलास करो। तुम बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप का भस्म हो जाएगा। बाकी और बातों में जावेंगे तो संशय बुद्धि हो करके धक्के खाते रहेंगे। भक्ति मार्ग में 63 जन्म धक्के खाए, एक गुरु किया दूसरा गुरु किया, धक्के खाए ना, एक मंदिर में भटके दूसरे मंदिर में भटके, एक जन्म में मंदिरों में जाते रहे, दूसरे जन्म में मस्जिद में गए, तीसरे जन्म में गुरुद्वारे में गए, कहां कहां आत्मा जन्म लेती रहती, भटकते रहे ना। यहां भी अगर और बातों में जाते रहेंगे, परचिंतन में लगे रहेंगे, तो संशय बुद्धि हो करके यहां भी धक्के खाते रहे। धक्के खाने का मतलब क्या हुआ? बाप से टूट जाएंगे और दूसरे गुरुओं के साथ संबंध जुड़ जाएंगे। 5 जुलाई या 6 जुलाई का 64 तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, धक्के खाने से फायदा नहीं, फिर वो याद की यात्रा उड़ जाती है। अगर बाप को छोड़ा, संशय बुद्धि बने, दूसरी जगह गए, तो फिर याद की यात्रा हो नहीं सकेगी। तो बाप को कायदे से याद न करने से संशय बुद्धि होकर के भटकते हैं। कायदे से का मतलब क्या हुआ है? कायदे से याद करना क्या होता है और बेकायदे से याद करना क्या होता है? ब्रह्मा के तन में याद किया तो कायदे से याद किया या बेकायदे याद किया है? अरे बेकायदे क्यों? जैसे भी याद करेंगे वैसे भूत बने। ब्रह्मा भूत प्रेत बने तो हमको भी भूत प्रेत बनना पड़ेगा। उनका हार्ट फेल हो गया, हार्ट कमजोर हो गया तो हमारा भी हार्ट कमजोर होता रहे, तो ये बेकायदे याद हो गई। अच्छा ब्रह्मा की ये बात हो गई तो और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को गुरु बनाकर याद करने की तो बात ही नहीं था। आज यहाँ एक बात करेंगे, यहाँ ज्ञान में आए निश्चय बुद्धि बने तो यहाँ आकर के एक बात करेंगे, पर जब यहाँ से टूट जाएंगे तो वहां जाकर दूसरी बात करेंगे। उनका ज्ञान ही सारा बदल जाता है। डिस सर्विस बहुत कर लेते हैं, सत्यानाश हो जाती है। क्या होती सत्यानाश होना? मन जब झूठी बातें दूसरी जगह जाके सुनावेंगे तो सत्य का नाश किया या सत्य को आबाध किया? सत्य को नाश कर दिया। मन वो सत्य की सच्ची दुनिया में नहीं आवेंगे। अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी संशय मिटा। भक्ति वाले मनुष्य बहुत फटकाते हैं। क्या भक्ति वाले कौन है, ज्ञान वाले कौन है, पता कैसे चले? मुख्य पॉइंट कौन सा जिससे ये पता चले कि ये भक्ति वाला है ये ज्ञान वाला है? अरे एक बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि है तो ज्ञानी है। बाप को पहचाना ना, पहचान मिली, समझ मिली तो ज्ञानी है, और बाप को भूल गया तो भटकने वाला बुद्धि, भक्ति मार्ग की बुद्धि वाला। भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी का ज्ञान होता है या एक व्यापी का होता है? तो फिर वो सर्वव्यापी का ज्ञान चल पड़ता है। फिर कहेंगे भगवान थोड़े इस दुनिया में आ सकता है। यहां आकर और बात करते थे, वहां जाकर दूसरी बात करने लग पड़ती है। कहेंगे भगवान इस दुनिया में नहीं आ सकता, वो तो निराकार है, ये सभी बातें गपोड़े हैं। थोड़ा सा संशय आया तो बाहर की दुनिया में जाकर के उल्टा ही बता देंगे, सारी की हुई कमाई चट हो जाती है। कैसे? यहां आते हैं तो बाप का दूसरों को परिचय देते हैं, सच्चाई की गमाई होती है, और बाहर की दुनिया में चले जाते हैं संशय बुद्धि होकर के, तो जो यहां कमाई की है वहां जाने से कमाई चट क्यों हो जाती है? कारण तो कुछ होगा। अरे क्या कारण होगा? सदगुरु निंदक हो अपना पाप है, कमाई खत्म हो गई, क्योंकि उस तरफ तो माया है, इस तरफ भगवान बाप है। ये माया और रावण की रस्साकसी है। रस्साकसी का खेल होता है ना, जो मोटा रस्सा होता है, एक तरफ एक सेना पकड़ती है, दूसरी तरफ दूसरी सेना पकड़ती है, कभी वो खींच के चले जाते हैं, कभी वो खींच के चले जाते हैं। तो ये भक्ति मार्ग वालों की और ज्ञान मार्ग वालों की रस्सा कसी हो रही है। कब? तो देखो माया जी सर्विस बहुत कराती है, एकदम थप्पड़ लगाई देती है जोर से, जोर से थप्पड़ किसी को लगे तो मोड़ा इधर घूमेगा कि इधर, जिधर थप्पड़ लगेगा उधर मोड़ा घूम जावे। तो जोर से थप्पड़ लगाती है और राम से विमुख करके मुख उमरावण की तरफ मोड़ देती है। ऐसे ऐसे बहुत आते हैं, फिर आकर के देखो क्या क्या, जब चले जाते हैं तो क्या क्या करते रहते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बरोबर ये तो बाप ही नहीं हमको पढ़ाई पढ़ाए गए, फिर कोई कसर से टूट जाता है, संग से टूट जाता है तो और ही सत्यानाश हो जाती है। ये और ही क्यों कहा, और ही का मतलब क्या है? अरे 63 जन्मों में तो सत्यानाश हुई थी आत्मा की, फिर जब बाप के बनते हैं तो कुछ प्राप्ति होती है, सच्चाई मिलती है, सच्चिदानंद के मालिक भी बनते हैं, फिर जब टूट जाते हैं तो जितनी पहले सत्य की तरफदारी की थी उतनी ही सत्य का विरोध करते हैं। माने 63 जन्मों में जितने ज्यादा नीचे नहीं गिरे थे उससे जास्ती नीचे फिर गिर जाते, क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो पाप करते हैं तो एक गुना फल मिलता है, और यहाँ ज्ञान मार्ग में अगर पाप करते हैं ज्ञान में आने के बाद तो फिर 100 गुना पाप का बोझ चढ़ जाता है, क्योंकि तो और ही नीचे गिरेंगे या ऊंचे उठेंगे, दूसरों को भी सत्यानाश करते हैं तो अपनी भी सत्यानाश करते हैं। थोड़ी तो बात में संशय हुआ तो एकदम माया के संग हाथ में आ जाते हैं, फिर माया भी अच्छी रीत से बाप से विमुख करती है। एक बार माया की पकड़ में आ गए तो फिर माया उनको अच्छी तरह से फटकाती है, अच्छी तरह से बाप का विमुख कर देती है, ऐसों को फिर बाप याद नहीं आ सकता, मुर्दे के मुर्दे ही रह जाते हैं। मुर्दे मन मुर्दे क्यों बात, क्योंकि मुर्दे को डंडा लगाओ तो उसको कोई असर नहीं होने वाला, तो ऐसे जो संशय बुद्धि मुर्दे बन जाते हैं उनको कितना भी फिर ज्ञान सुनाते रहो उनको कोई असर नहीं पड़ता है, पतित के पतित ही रहेंगे, ऐसे फिर क्या पद पावेंगे, क्या पद पावेंगे? इसका जवाब क्या है, जो ज्ञान में आने के बाद दूसरों की सर्विस करने के बाद संशय बुद्धि विनश्यंती हो जाते हैं वो जाकर के क्या पद पाते हैं, संशय बुद्धि विनश्यति, विनश्यति का मतलब क्या विनाश हो जाता है, पद का विनाश हो जाता है। यहाँ आए दूसरों की सेवा की, बहुतों को संदेश दिया, बहुतों को कोर्स दिया, भट्टी भी कराई, बाबा के सामने भी ले गए, तो उनको राज घराने में कोई पद सूट हो जाता है, फिर जब विपरीत बुद्धि बन जाते हैं तो पद नीचे गिरेगा ऊंचा ही उतना ही बना रहेगा, नीचे गिरता है, नीचे गिर के फिर जाकर के नौकर चाकर बनते हैं। यहां आए तो राज घराने में आए, टूट करके चले गए तो फिर नौकर चाकर बने, और नौकर चाकर भी दो तरह के होते हैं, एक तो प्रजा के नौकर चाकर और दूसरे राज घराने के नौकर चाकर, ऐसे ऐसे बेमुख हो जाते हैं। बल ज्ञान सुना है तो उनके ज्ञान का विनाश नहीं होगा, उनका ज्ञान ऐसे नहीं खलास हो जाएगा, परंतु कोई संशय हुआ डिसर्विस की तो पद नीचा हो जाता है। बाहर की दुनिया में भी साहूकारों को दास दासियां नौकर आदि तो चाहिए ना, अनेक प्रकार के संशय आते हैं। तुमने यहाँ देखा भी बहुत अच्छा अच्छा, तुमने ऐसे बहुत देखे होंगे जो ज्ञान में आते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान, अच्छा अच्छा कहते हैं, कहेंगे हमने ऐसा ज्ञान पहले कभी भी नहीं सुना, और यहाँ से घर गए और कोई ने नाक से ऐसा पकड़ा कि सारा अच्छा अच्छा कहना भूल जाते और ये गालियां लिख करके भेज देते हैं। सुनी सुनाई बातों पर कितना सत्यानाश कर लेते, ऐसे भी होता है, ढेर की ढेर चिट्ठियां आती हैं, संशय बुद्धि हो जाते हैं। जिसको बाप समझता था, बाप समझ करके बाप को भाकी पहन करके गए, ऐसे फिर जाकर के माया की चपेट में आने के कारण गालियां लिख लिख करके भेजते। बाप कहते हैं दास दासियां नौकर चाकर आप जाकर के बनेंगे, नहीं तो कहां से आवेंगे। इसलिए गायन है संशय बुद्धि विनश्यति, और सदगुरु का निंदक ठौर न पावे, कौन सा ठौर है भक्ति मार्ग में, तो वो गुरु लोग धमकाते रहते हैं शिष्यों को, ये सदगुरु को तुमने निंदा अगर कराई तो तुमको ठौर नहीं मिले, अरे तुम तो अपना घरघाट वैसे ही छोड़ करके बैठे हो। मान लो कोई राजा है सन्यासी बन गया तो राजपाट छोड़ करके तुम वैसे ही बैठे हुए, तुम क्या ठौर दे, तो कहां की बात है। यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की बात है, बाप के बनते हैं और बन करके फिर टूट जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको ऐसे संशय बुद्धि बनने वालों को फिर राजघराने में जन्म जन्मांतर कहीं भी ठौर नहीं मिलता है। राजघराने में ऊंच पद नहीं पावेंगे, कहां जाएंगे, नौकर चाकर जाकर बनेंगे, कोई चंडाल बनेंगे। ऊंच के ऊंच ठौर तब पा ही नहीं सकते, एक बार गिर गए तो उतना ऊंच ठौर फिर नहीं पा सकते, जैसे कर्म करते हैं वैसे ही कर पाते। कोई के यहां गए अपने धंधे आदि में संघ के रंग में आकर सभी भूल जाते हैं, कोई डिस्टर्विस करते हैं निंदा आदि कराते हैं, उनके लिए बाप कहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पाए। सदगुरु के बच्चों को भी निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा करके माया के मित्र बन जाते। बाप तो हर एक बात समझाते कि याद भी कैसे करना चाहिए, ऐसे जो संशय बुद्धि हो डिससर्विस करते हैं उनको अगर आने न दो, क्या कोई संशय बुद्धि हो गया जाकर के डिससर्विस करता है और फिर उसको क्लास में आने के लिए मना कर दो तो क्या करेंगे है? क्या उसका उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, और ही ज्यादा ग्लानी करेगी और ही डिससर्विस करने लग पड़ेंगे, दुश्मनी होती है ना, जितना बाप के मित्र हैं उतना फिर दुश्मन भी है। बाप के सभी मित्र बनते हैं। क्या बाप के सभी मित्र बनते हैं, फिर बाप के सभी दुश्मन भी बनते हैं। ये कैसे है, ये हो सकता है? अच्छा, आठ बाप के मित्र भी बनते हैं जन्म जन्मांतर के, फिर अंतिम जन्म में जाकर जब अंतिम जन्म में दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो दुश्मन भी बनते हैं। फिर ये क्यों कहा कि बाप के सभी मित्र बनते हैं और सभी दुश्मन बनते हैं? कौन से बाप के? हाँ, ऐसे नहीं ज्योतिबिंदु बाप के सभी दुश्मन और मित्र बनते हैं, उसके तो दुश्मन और मित्र बनने की बात ही नहीं। अगर ज्योतिबिंदु बाप की बात हो तो फिर प्रजापिता भी दुश्मन हो जाना चाहिए, होना चाहिए या नहीं है? कैसे कैसे होगा? ऐसा कर है ही नहीं, मित्र तो हो, दुश्मन बनेगा किसका? तो किसके लिए ये बात लागू होती है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके लिए ये बात लागू होती है कि सारी दुनिया उसका दुश्मन बनती है और सारी दुनिया उसका मित्र भी बनती है। दुश्मन बनते हैं तो फिर क्या गालियां देने लग पड़ती है, कह देते हैं ठिकर भित्तर में भगवान है, भगवान इस सृष्टि पर कभी आता ही नहीं, तो दुश्मन कह रहे ना बाप को ही उड़ाई देते हैं। फिर बाप आकर उनकी सर्विस करते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते हैं ठिकर भित्तर में कुत्ते बिल्ले में सभी में अल्लाह, एक तरफ अल्लाह को याद भी करते हैं। क्या बात हुई? कुत्ते में अल्लाह है तो कुत्ते को याद करो, सुअर को याद करो, सो नहीं याद करेंगे, पागल बन जाते हैं। ऐसे बहुत हैं, बाबा को भाकी पहनकर फिर कहेंगे यहां आएंगे तो बड़े प्यार से बाबा की बाकी पहनेंगे, देखने वाले समझेंगे बड़ा प्यार है बाबा के साथ, है बाकी पहनेंगे, फिर बाहर जाके दूसरों से कहेंगे देखो उनका भगवान बाकी पहनता है, कन्या माताओं को भी बाकी पहनता है, ऐसे जाके किस सर्विस करते हैं। बहुत समाचार आते हैं ऐसे ऐसे कहते रहते हैं, अरे तुम क्या समझ करके बाकी पहने, वंडरफुल समाचार आते हैं। माया कितनी दुस्तर है, बाप कहते हैं तुम बड़े दुस्तर हो, कौन बड़ी दुस्तर कौन है? तर, दुस्तर दो माने कठिनाई से, तर माने पार करने योग्य, कौन है बड़ी दुस्तर जिसका पार नहीं पाया जा सकता, बहुत मुश्किल है उसका पार पाना? माया। बाप कहते हैं माया, अरे माया बेटी तुम बड़ी बड़ी दुस्तर, मेरे बच्चों में भी ऐसे प्रवेश करती हो जैसे बैड सोल प्रवेश करती है, इविल सोल जैसे प्रवेश करती है, ऐसे मेरे बच्चों में प्रवेश करके बोलती हूँ, तुमको माया ने पापात्मा बनाया, एकदम सत्यानाश हुआ। तो देखो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्यों? माया सत्यानाश करती है पद नीचा कर देती है तो तुम बच्चों को खुशी क्यों होना चाहिए है? बावन बोला जोर से बोला है? है? क्या कहते हैं बाबा मिल गया इसलिए खुश होना चाहिए, इनको बाबा नहीं मिला इसलिए खुश होना चाहिए कि हमको बाबा मिल गया, अगर इनको बाबा मिला और मिल करके भी छोड़ के चले गए तो हमें खुशी होना चाहिए, माने सब छोड़ के चले जाएंगे तो हम बहुत खुशी होंगे ऐसे है? खुशी इसलिए होनी चाहिए कि जो छोड़ के चले जाते हैं और जिस सर्विस करते हैं, पहले सर्विस करते थे, दूसरों को परिचय देते थे, उनको जिन्होंने बाप का परिचय दिया उनकी भी महिमा करते थे कि हम तो पहले कुछ नहीं जानते थे, इन्होंने हमको गिरते से बचा लिया, फिर जब छोड़ के चले जाते हैं तो तुमको इसलिए खुशी होती है कि वहां नई दुनिया में हमको दास दासियां भी तो चाहिए, वो कहां से आएंगे है? दास दासियां चाहिए या नहीं चाहिए?
चाहिए,
चाहिए। तो ऐसे वो हम पद जाकर के पाते हैं बाप से, या तो इतना ऊंच पद पाते हैं या एकदम नीच पद पा लेते हैं। तो देखो तुमको तो वहां लेटरिन आज सफाई करने वाले भी चाहिए ना, क्यों ये खुशी होनी चाहिए, ये टूट गए तो हमारी सफाई याद करेंगे राजा में, तो सभी चाहिए क्या हर तरह की चाहिए, बस बाप के बच्चे बनते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं साथ में भी रहते हैं, तो जो बाप के बच्चे साथ में रहते हैं तो क्या सब ऊंच पद पावेंगे है? सब ऊंच पद पावेंगे बाप के साथ रहने वाले, बाप से पढ़ाई पढ़ने वाले, बाप से समझने वाले, बाप के टीचर प्रैक्टिकल टीचर के बच्चे बनने वाले प्रैक्टिकल में बहुत होंगे, कितने होंगे कम से कम, अच्छा कितने होंगे? 16,000 108 राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले होते हैं, उनमें सब तो राजा नहीं बनते, कितने बनते हैं? 108 राजाएं बनते हैं, तो 108 रानियां भी बनती हैं, 8 महाराजाएं भी बनते हैं, तो महारानियां भी बनती होंगी, और बाकी सब है? बाकी सब क्या बनते हैं? हाँ बाकी सब प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाते हैं, बाकी कोई जन्म जन्मांतर प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं और कोई आखिरी जन्म में सिर्फ एक बार प्रिंस बन के रह जाते हैं, बाकी पहले के जन्मों में दास दासी बनते रहते हैं। तो साथ में रहने वाले दास दासियां संभालने वाले सब करने के चाहिए ना, क्योंकि ज्ञान तो पूरा उठाते नहीं है, दास दासियां संभालने वाले ये नीच पद पाने वाले कौन बनते हैं? जो पूरा ज्ञान नहीं उठाते हैं। अभी तुम तो सन्मुख सुन रहे हो, दूसरे भी फिर मुरली सुनेंगे, यहां आते भी हैं, अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं, कोई तो ऐसे असुर हैं जो यहां आकर के अमृत पी करके फिर बाहर जाकर के बहुत तंग करते हैं, अमृत पीने के बाद भी फिर बाप को, बाप के परिवार को, बाप के बच्चों को बहुत तंग करने लग पड़ते हैं। ऐसे भी होता है, फिर कोई तो छोड़ के ही चले जाते हैं। बस कोई निंदा आदि नहीं करते, तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। हाँ, जो यहाँ आकर के संदेश लेंगे वो स्वर्ग में तो जरूर जा रहे हैं, प्रजावर्ग में आ जाएंगे। सदगुरु की व उनके बच्चों की निंदा कराने वाले उनसे तो उपाय नहीं, सकते सुनते भी रहते हैं, बाहर में जाते हैं तो माया भी देखती है, ये कच्चा है तो उन कच्चों से उल्टा काम करा लेती है। बाहर गए और लगा माया का थप्पड़, फिर दर दर ग्लानी करने लग पड़ते हैं। तो ऐसे दर दर ग्लानी करने वाले भी स्वर्ग में आ जाएंगे क्या? मिसाल दो, एडवांस पार्टी में कोई ऐसे हुए हुए या नहीं हुए? बाप के बच्चे बने और बाप की ग्लानी करने लग पड़े, घर घर में जाकर के बाप की ग्लानी की, वो भी कहाँ आ जाएंगे? वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। कैसे? कोई मिसाल हो तो बताओ। भक्ति मार्ग में चित्र भी बने हुए हैं, राम के जो भाई हैं, तीन और भाई हैं ना इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन, वो क्या करते हैं? पहले बाप को शुरुआत में पहचानते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं, उनको सहयोग भी देते हैं, खूब लिटरेचर आदि भी छपाते हैं, चारों तरफ भेजते हैं, घर घर में जाके सर्विस भी करते हैं, बाप के साथ भी ऑल इंडिया टूर लगाते हैं। फिर बाद में घर घर में जाकर के ग्लानी करते हैं। ऐसी ग्लानी करते हैं जो घर घर में अखबार पहुंचते हैं ग्लानी के, जिनमें बाप की ग्लानी भरी हुई है, ऐसे भी स्वर्ग में आ जाते हैं। वो आके क्या पद पावेंगे? क्या पद बनेगा? अरे भक्ति मार्ग में कोई चित्र दिखाए जाते हैं कि नहीं? उन चित्रों में उनका पद भी दिखाया गया है। हाँ, राम के जो और तीन भाई हैं, उनमें कोई छाता लेके खड़ा हुआ है, कोई पंखा जला रहा है, कोई पांव धो रहा है, चित्र तो दिए हुए हैं ना, कहाँ के चित्र हैं? संगम के चित्र। तो देखो वो स्वर्ग में तो आ रहेंगे, वो पद कौन सा पावेंगे? पाई पैसे का पद पालेंगे क्या? और छोटा पद हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे रूवानी बच्चों को, रूवानी बाप दादा गया, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।